یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 628.
بسم اللہ
یا علی مدد. جنوری کی 7 تاریخ کو 7 یا 8 مجھے خیال ہے صاحب نے بج نرنجن شروع کیا تھا، پہلا پاٹھ ہوا تھا، اس کے 32 پاٹھ ہیں، اس کو چھوگا بھی کہتے ہیں، پاٹھ بھی کہتے ہیں. آج میں دوسرا چھوگا ہوتا ہوں. تھی مارا سچا سائیا پیو جی نرالا نرنجن کہیں بھائی نرالا نرنجن کہیں نرالی کہیں کچھ بات رے بھائی نرالی کہیں کچھ بات گونگے سپنا پا سمجھ پچھ تات رے بھائی سمجھ سمجھ پچھ تات. مولانا حضر امام کے صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد. یہ پاٹھ لاسٹ ٹائم پڑھ کے تو پاٹھ پورا ہوا، میں ہر دفعہ اس کو ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ. خلاصہ تو میں کر چکا ہوں کہ وہ خدا جو نظر نہیں آتا، اس کا کوئی آکار نہیں، اس کا کوئی سوروپ نہیں، اس کی کوئی فزیکل باڈی نہیں، کچھ نہیں، میٹر نہیں کہ ہمیں آنکھ سے نظر آ سکے. وہ ایبسلیوٹلی اسپرچل ہے، نور ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں پچھلے دن کہتے ہیں وہ بھی نرالی ہیں. نرالا کہتے ہیں یونیک کو، اور انگلش میں نرالا مینس یونیک، اس جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں. اس کی خود کی جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی نرالی ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ بھی نرالی ہیں. جب ہم کو اس کی سمجھ آتی ہے تو پیر کہتے ہیں وہ ایکسپلین نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو ورڈز ہیں ان کو کیری نہیں کر سکتے. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کسی میوٹ آدمی کو جو گونگ رہا ہے بول نہیں سکتا، اس کو کوئی بہت اچھا سپنا آیا ہے، اب وہ بے چین ہے کہ یہ میں سپنا سب کو بولوں لیکن کیا کرے، بول نہیں سکتا. ایسا ہی وہ سمجھ سمجھ کے پچھتاتا ہے اپنے دل میں کہ میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتا. خدا کی باتیں خدا ہی جانتا ہے، لیکن جب وہ کسی پہ راضی ہوتا ہے تو پھر اپنی کچھ بخشیشیں اس کو دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی کسی کو وہ بات کہہ نہیں سکتا، کہنا بھی چاہے تو کہہ نہیں سکتا. ابھی بج نرنجن اسی لیے نام رکھا گیا، कि तुम जो इनविजिबल है उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करो। अभी दूसरा पार्ट जो है ना, उसमें बड़ी समझन जैसी चीज है। वे न्यारी थे, न्यारी कर जानो रे भाई, न्यारी थे न्यारी कर मानो, जानो नहीं मानो, ये तो थे कछु वहां पिछानो रे भाई, ये तो थे कुछ वहां पिछानो। सूफियों की बातें हैं ये सारा ग्रंथ, ये सारी किताब मिस्टिसिज्म के ऊपर है। मैंने ताज भाई को कहा था कि जमात के अंदर बोलूं तो सही ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर बाज ऐसी एडजेक्टिव्स आते हैं कि जो सूफियों के हैं, आएंगे आगे मैं आपको बताऊंगा, वो लोग के जिन्होंने कभी कभी कुछ सूफीज्म या मिस्टिसिज्म की किताबें पढ़ी हैं और उनकी टर्मिनोलॉजी को जानते हैं, उनके लिए ये किताब बुझ निरंजन का ये शास्त्र समझना आसान हो जाता है। अब देखिए, पीर कहते हैं कि जो न्यारी थे वहां, वो यहां भी न्यारी हैं। न्यारी का मतलब जो यूनिक है, जो सब जैसे नहीं है, जैसे कि मंसूर सारी दुनिया में आज तक करोड़ों अब जो इंसान पैदा हुए, मिलियंस ट्रिलियंस आए, लेकिन मंसूर जैसा कोई ना हुआ। इस तरह के और भी बहुत से लोग पैदा हुए हैं। हजार बरस पहले जलालुद्दीन रूमी करके एक बड़े सूफी हुए, आज हजार बरस हो गए, सारी दुनिया में रूमी जैसा कोई पैदा ना हुआ। कलंदर बू अली पानीपत में रहते थे, उसका नाम उमर था, सुन्नी थे। पानीपत इंडिया में बॉम्बे से सॉरी दिल्ली से 100 माइल के करीब है। तो पानीपत में पैदा हुए, उमर नाम रखा गया, सुन्नी थे। लेकिन जब खुदा राजी होता है और खुदा नजर डालता है तो समुन्द्र में से मोती निकलते हैं। एक रात को सोए थे, ख्वाब में मौला अली का दीदार किया। अब ये दीदार यूं ही नहीं हुआ, इबादत करते थे, नेक थे, वजीफे करते थे, तस्बीहां करते थे, खड़े खड़े इबादत करते थे। एक रात अली का दीदार हुआ, कहा देख मैं अली हूं, और आपने मौला मुर्तजा अली ने इसके सर पे हाथ रखा, इसको बख में लिया, हग किया, और जब छोड़ा तो इसके बदन से अली की बू आती थी। नाम बदल दिया, उमर मिट गया, बू अली कलंदर नाम हो गया, बू अली, अली की बू वाला। लाखों करोड़ों इंसान उसके बाद पैदा हुए, लेकिन उस जैसा कोई ना हुआ। इस किस्म की बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि जो आला किस्म के जो लोग होते हैं, जब खुदा नजर डाल देता है तो वो मिट्टी का सोना बन जाता है। इनको हम न्यारी कहते हैं, यानी यूनिक, ऐसी हस्तियां, ऐसे लोग, ऐसे जीव, कि वो जब नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो फिर वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, उस जैसा फिर दूसरा नहीं होता। तो फिर यहां कहते हैं कि जो इस किस्म के जो सूफी हैं, जो मिस्टिक्स हैं, जो रूहानी लोग हैं, जो खुदा के वली बन जाते हैं, फिर उनकी दुनिया अलग हो जाती है, उनकी नजरें जुदी हो जाती हैं, वो लोगों से अलग रहते हैं ख्यालों में भी और यूं भी, मगर लोग उनको पहचान नहीं सकते। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं। मैं अपनी वाज़ों के अंदर इस किस्म की बहुत सी दलीलें दे चुका हूं मौला की रहमत से, बहुत से टॉपिक्स मैंने पूरे किए हैं। एक वाकया यहां मुझे याद आया, ये चीजें समझने के लिए अच्छी चीज है। ऐसे ही एक सूफी लाहौर में थे, पाकिस्तान में लाहौर है, अब लाहौर का जो शहर है उसके अंदर से एक रिवर निकलता है, उसको कहते हैं रावी, रिवर रावी। इसके किनारे के ऊपर एक छोटे से फकीर थे, बुल्ले शाह, वो पागलों जैसी बातें करते थे, लेकिन जो इबादत वाले सूफी टाइप के जो लोग थे वो उनको समझते थे। छोटी सी झोपड़ी थी, हट रिवर के किनारे पे, वहां वो रहते थे। कभी कोई आदमी आया और साथ बिठा के खिला दिया तो खा लिया, नहीं तो दिन कई के दिन निकल जाते थे, वीक्स वीक्स निकल जाते थे, खाना नहीं खाते थे। और उनको इसकी हाजत भी नहीं थी, कभी किसी से मांगा भी नहीं कि मुझे भूख लगी है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बहुत मशहूर हो गए तो चाहने वाले कुछ स्टूडेंट्स, कुछ शागिर्द, डिसाइपल्स वगैरह जमा हो गए। अब झोपड़ी जो थी, वो हट जो था, वो नदी के किनारे पे था, पेस्टर लैंड था। एक 10-12 साल का लड़का अपने बाप की भैंसे ले आता था हर रोज, 10-20 के पता नहीं कितनी भैंसे थी। वो भैंसे उधर पानी में पड़ी होंगे सारा दिन, और भैंस को पानी बहुत पसंद है, पर्टिकुलरली वार्म क्लाइमेट के अंदर। तो भैंसे तो पानी में पड़ी हैं और ये इधर उधर नाचता है, बेर तोड़ के खाता है, फल तोड़ के खाता है, गाता रहता है। और वो देख रहा है हर रोज के बहुत से लोग इस आदमी को मिलने आते हैं। एक दिन देखा दूर से कि सैयद बुल्ले शाह अकेले बैठे हैं, झोपड़ी के पास दरवाजे पे आके बाहर खड़ा रहा। वो उठ के बाहर आया, सिर पे हाथ रखा, प्यार किया, कहते शाह साहब अब क्या काम करते हैं। हंस पड़ा, कहने लगा हम खुदा का रास्ता बताते हैं। हाँ, तो मुझे भी बताइए। उसको देखा, मासूम लड़का है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, छोटी उम्र से बस खेल तमाशे में निकाला। कहने लगा मुझे बताओ ये भैंसें किसकी हैं। क्या मेरे अब्बा की हैं। इसमें कोई ऐसी भैंस है जो तुम्हें बहुत पसंद है। कहता वो पड़ी है। पूछा कैसे पता लगे कि तुझे पसंद है, तुझे पसंद करती है। कहता हाँ वो भी मुझे पसंद करती है। सीटी मारी, वो भैंस पानी से बाहर निकल के इसके पास आके खड़ी हो गई। कहने लगे वाह वाह, देखो बेटा तुम इस भैंस के साथ प्यार करो, इसकी बहुत खिदमत करो, इसका बहुत ध्यान रखो, फिर हम तुमको एक दिन खुदा का रास्ता बताएंगे। अच्छा जी, बस इसने उस भैंस का ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। भैंस, उसकी जो भैंस की जो ब्रेन है ना, उसके अंदर इंटेलिजेंस जैसी बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन फिर भी उसने इंसान के प्यार को, लव को, रिसीव किया, रिसेप्टिव बन गई प्यार की। भैंस के ऊपर भी प्यार ने असर किया। ये खड़ा होवे तो दूध देवे, अगर ये दूर है तो दूध नहीं देवे, ये बुलावे तो भागती चली आवे। ये वो उसका हुक्म माने, ये इसको प्यार करे। 6 महीने गुजर गए। एक दफा अपने शागिर्दों के पास कंपेनियंस पे बैठे बातें चीते कर रहे हैं, कहने लगे वो यार 6 महीने पहले वो लड़का इधर भैंसों वाला, अब क्या हाल है उसको पूछो तो सही। तो एक आदमी उठा, उसने लड़के को बुलाया, लड़के की आंखों में फर्क पड़ गया, नजदीक आया, दरवाजे की झोपड़ी का जो दरवाजा था बाहर खड़ा रहा, कहते आओ बेटा आओ अंदर आओ। तीची निगाहें की हुई हैं, हाथ जोड़े खड़ा है, आओ अंदर आओ। कहते मेरे सींग बहुत बड़े हैं, मैं अंदर नहीं आ सकता। सींगड़े बड़े हैं, मैं अंदर नहीं आ सकता, सींगड़े तो नहीं है। फौरन खड़े होकर कहने लगे ये लड़का तैयार हो गया। मैं आपको एक बड़ी सटल चीज कह रहा हूं, समझाता हूं। अब वो लड़का है, इंसान है, सींगड़े नहीं, लेकिन वो महसूस करता है कि मेरे सींगड़े बड़े हो गए हैं, मैं अंदर नहीं आ सकता। क्या है, कौन सी चीज फर्क पड़ गई? वो भैंस के साथ प्यार करते 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 खुद को भैंस समझने लग गया। उसका दिमाग हमारी दुनियावी नजर से बिगड़ गया। इसमें ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी कि लोग कहेंगे पुत्र तेरा बिगड़ गया है, दीवाना हो गया है। वो दीवानगी लोगों के लिए है, मगर उस दीवानगी के अंदर जो खुदा ताला की चमक है वो कोई नहीं जानता। बाहर निकला, लड़के को गले लगाया। अब उसको एक इसमें आजम दिया कि देखो बेटा तुम ये भैंस का नाम है। अब उसको ये नहीं कहा कि खुदा का नाम है, देखो ये तेरी भैंस का ये नाम है। भैंस का नाम है, खुदा का नाम नहीं, लेकिन इसी नाम, हालांकि वो खुदा का नाम है। भैंस भी खुदा ताला की क्रिएशन है, ले उसने क्रिएटेड और क्रिएटर इन दोनों को एक बना दिया। भैंस तो भैंस, जानवर तो जानवर, लेकिन क्रिएटर ने इस जानवर को बनाया तो क्रिएटर और इस क्रिएटेड क्रिएचर के अंदर कोई फर्क, हां बहुत, लेकिन अब वो लड़का ऐसा आ गया कि उसने वो फर्क महसूस नहीं किया। खैर उसको लाइन पे लगा दिया। बात क्या है समझने की कि जो क्रिएटर है वो सारी क्रिएशन के अंदर मिक्स हुआ हुआ है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जहां नजर डालता हूं या मौला तू ही नजर आता है। लोग नजर नहीं आते, दरख्त नजर नहीं आते, पहाड़ नजर नहीं आते, तू नजर आता है, तेरी शान न्यारी है। इसलिए पी सदरुद्दीन महबूब कहते हैं कि जो न्यारी इस दुनिया के अंदर जो न्यारे हैं, यानी वो कि जो खुदा की शान को समझते हैं और लोगों जैसे नहीं हैं, वो वहां भी न्यारे हैं। और वो लोग जो पहचानते हैं लोग नहीं पहचानते। ए सब शिफायत ताकों जाकों, तवेर भाई सब शफायत ताको जाको भवे सो शफायत गुण वेदंत वादंत कहा वेरे भाई पेन चाहिए सो शफायत गुण वादंत कहावे। अब खुदा ताला की जो जात है वो वाहद है, वाहद कहते हैं अकेला यूनिक, उस जैसा कोई ना हो है। और उसका नाउन है वहदत। अभी ये जो वहदत है कि खुदा अकेला है यूनिक है, ये इस्लाम का प्रिंसिपल है। इसलिए हर चीज उसके अंदर फना होती है, मिट जाता है उसका खुद का एग्जिस्टेंस। खुद को मिटा के खुदा के अंदर मिल जाना ये भी वहदत है। उस वहदत के अंदर पहुंच जाना चाहिए। और शिफायत जो है वो रसूल की है। शिफायत का मतलब है रिकमेंड करना। शिफायत का मतलब यह है कि खुदा के हुजूर में उसके इंटरसेशन करना। नबी इंटरसेस करेंगे, या मौला तू रहीम है, इसके गुनाह है बख्श दे। इंसान है ये, जो इंटरसेशन है ये इस्लाम का बड़ा प्रिंसिपल है, और खसूसी तौर पे इस्माइली तरीके में यही इंटरसेशन है जो हर रोज हम यहाँ जमात खाने में आके हम कहते हैं तो वो बंदो गुनेगार गत बख्श है, शाह पीर बख्श है। ये इंटरसेशन है, उसमें गत भी है शाह पीर आते हैं। तो इधर ये जो शफायत है, जितनी भी शफायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम करते हैं वो सब शफायत कुन वहदत कहावे। कुन वहदत, जिस तरह से कुन फया कुन, खुदा ताला कहता है मुझे ख्याल हुआ मैं क्रिएट करूं, मैंने कहा बी एंड इट बी, मैंने कहा हो जा वो हो जाए। उसको कोई प्लान बनाने की जरूरत न पड़ी। तो इसी तरह से जो शफायत है वो नबी की है, और वादत है वो अल्लाह की है। ये दो चीजें अगर समझ में आ जाए तो मिस्टिसिज्म सूफीज्म का एक बहुत बड़ा नुक्ता हाथ में आया। नबी की शफायत, अल्लाह की वादत, और इस वहदत के अंदर अपने आप को मिटा देने की बात करते हैं। इस रस्ते के अंदर जब हम खुदा के मूल्य मुतालिक सोचते हैं तो उसके हजारों स्वरूप हैं। मैंने अभी आपको कहा कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जगह नजर आता है। और अगला पाठ यही डिपिक्ट करता है, रूप अनूप अनेक दिखावे रे भाई, रूप अनूप अनेक दिखावे, बात बात पिया भेख फिरावे रे भाई। पिया, इसको हमारे पीरों ने अपने गिनानों में मौला को पिया कहा है। पिया कहते हैं जिसको हम प्यार करते हैं, जो हमारा मकसूद है, हमारा डेस्टिनेशन है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्ट भी वही है, हमारा सब कुछ वही है, सेंटर वही है। तो रूप अनूप बहुत दिखाए, इसके रूप अनूप इतने हैं कि हम उसको गिन भी नहीं सकते। और फिर कहते हैं कि बात बात में पिया भेख फिरावे, बात बात में घड़ी घड़ी फ्रीक्वेंटली वो अपना भेख फिराता है, अपनी एग्जिस्टेंस, अपना रूप, अपना ड्रेस, अपना अपीयरेंस चेंज करता रहता है। उसको किस हालत में देखना, किस हालत में जानना, ये इजी नहीं है। द्रौपदी कौरवों के कोर्ट में, महफिल में सैकड़ों आदमी उसके सामने बैठे हैं और दुर्योधन ने एक आदमी को कहा, दुशासन उसका नाम था, कि तुम इसकी साड़ी उतारो, मरने जैसी बात है। उसने साड़ी उतारनी शुरू की, खींचता रहा, साड़ी को या हो गए 6-7 गज यार्ड की साड़ी हो गई, बहुत बहुत 10 यार्ड हो गए, लेकिन यहां सैकड़ों हजारों यार्ड निकल गए, साड़ी खत्म ही नहीं होती। थक गया, छोड़ दिया। द्रौपदी की इतनी लंबी साड़ी, सारी कोर्ट भर गई। अलवा द्रौपदी को जब ये सजा दी गई तो वो अंदर रो रही है, ए मौला, कृष्ण वो जमाने का ऑब्जेक्ट था, इनका अवतार था, नूर था, उसको याद कर रही है। रिश्तेदार भी होती थी, रिलेशनशिप थी, लेकिन भगत भी थी। ए मौला, मेरी लाज रख, मेरी शर्म रख, मेरी मदद कर। अब उसको रो रही है और याद कर रही है, हे मथुरा के धनी, मथुरा एक शहर है जहां कृष्ण राज करता था, हे मथुरा के धनी तू जल्दी आ, हे मधुबन में घूमने वाले नाचने वाले तू जल्दी आ। जुदे जुदे अलग अलग तरीके से उसको याद करते रही, हे वैकुंठ धनी, वैकुंठ यानी बहिष्ट का मालिक। आखिर उसकी सब तारीफें करते करते मुंह से निकला, हे प्राणनाथ, हे मेरी जान, मेरी मदद कर। तो सामने आके खड़ा हुआ, कहां गए थे तुम, कितने देर से मैं तुम्हें याद कर रही हूं, मैं क्या करूं, तू मुझे मथुरा में भेजती थी, तू मुझे मधुबन में भेजती थी, तू मुझे बहिष्ट में भेजती थी, क्यों ना कहा। मेरी जान, मेरे प्राण, मतलब कहने का क्या था कि इसके साथ जीतना इजी नहीं है, क्योंकि उसके स्वरूप बेहिसाब है, जो कुछ भी कहो वो वही है। किसी को एक रूप में दर्शन दिया, किसी को दूसरे रूप में दीदार दिया, बात बात में वो अपने भेख अपीयरेंस बदलाता रहता है। इने दोता वह व्रत कहीं रे भाई, जा को दो शफायत सो लई रे। इसको ढूंढने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, खुदा ऐसा नहीं है कि याद किया तो फौरन मिल गया, वो बड़ा मुश्किल है, उसका रास्ता भी मुश्किल है, लेकिन उसको नबी करीम की शिफायत से मिलना इजी है। वास्ता चाहिए बीच में मोहम्मद का, पीर का वास्ता देते हैं, इसीलिए हम अपनी इबादत के अंदर रसूलुल्लाह की इस हदीस के ऊपर अमल करते हैं। नबी फरमाते हैं कि तुम जब दुआ मांगो तो मेरा वास्ता डाला करो, यानी ऐ खुदाया मोहम्मद के वास्ते मेरी दुआ कबूल कर। और यही बात हमारी मजहब में है कि हम पीर जब परसादे कहते हैं, परसादे कहते हैं वास्ता, हम इस प्रसादे को समझे नहीं। पीर जे प्रसादे, नर जे प्रसादे, नर यानी इमाम की तुफैद इसके वास्ते, और पीर का तो वास्ता यानी पीर की तुफैद पीर के वास्ते, मेरी मुश्किल आसान कर। सुबह का सतारा निकलता ना, तो सताड़े के अंदर हम दुआ निकालते हैं, मेट्रो शैल के सताड़े में तस्बीह निकालते हैं सताड़े की, फिर हम कहते हैं या मौला सताड़े जो प्रसादे मजलिस जीवन के कबूल कर, पीर का नाम तो भूल गए। सताड़ा हमने डाला है विनती के लिए, सताड़े का प्रसाद नहीं हो गए, सताड़े का वास्ता नहीं हो गए, वास्ता पीर का होता है। या मौला पीर जे वास्ते पीर जे प्रसादे सताड़े जीवन की कबूल कर। हमारे बहुत से किनारों के अंदर इस तरह से है कि नर जे प्रसादे पीर बोलिया, पीर जे प्रसादे पीर बोलिया, और खासतौर पर सैयदा इमाम बेगम के गिनानों के अंदर ये पीर का वास्ता बहुत है। तो नबी का जो वास्ता है वो हमारे लिए एक रास्ता है। जब भी दुआ पूरी कर लो तो कहो कि या मौला पीर जे प्रसादे मेरी दुआ विनती कबूल कर, हमारा काम विनती करना है। तो यहां भी पीर कहते हैं कि सदरुद्दीन मां बाप के उसकी जो शिफायत है वो शिफायत से हमें लाभ मिलेगा। जा में जा इस्म की हो रे भाई, जा में जा इस्म की हो, कहे अलूप वत होई सोए। होई सोए रे भाई जा में जा, फारसी लफ्ज है जा, कहते हैं जान को, हमारी लाइफ को, जीव को। और जा का दूसरी भी मतलब है वहां। तो यहां यह है कि जा में जा, जिस बात के अंदर, जिस शरीर के अंदर, जिस जगह पे हमारी जान बैठी हुई है, यहां जान बैठने का मतलब उसको मोहब्बत करते हैं तब वो मिलता है। अपनी जान में उसको जान बना डालो, यानी कि हमारी जो जान है ये हकीकत में वो है। मां अपने बच्चे को प्यार से कहते हैं, नहीं मेरी जान तुम फिक्र मत करो मैं बैठी हूं। यहां मां की जान बच्चा है, वो मां की जान है, यानी कि मां उसको इतना प्यार करती है। और खुदा ताला हमारी जान है, हमारा जो जीव है वो खुदा ताला ने पैदा किया है। हज़रत इमाम के एक फरमान में है कि सोल इज क्रिएटेड बट इट इज एटर्नल। जीव को एक दफा मौला ने पैदा किया है लेकिन उसको ये दर्जा दिया कि वो एटर्नल है, फिर न मिटता नहीं मरता नहीं। और कहे अलूप तब हो ही सही है, अलूप कहते हैं छुप जाना, अलूप कहते हैं गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। और वो जो परवरदिगार है वो है लेकिन अलूप है, मतलब कि आंखों से दिखता नहीं, वो अलूप होता है मगर हर जगह मौजूद है। और उसके इस खेल तमाशे में कि कभी वो जाहिर होता है कभी छुप जाता है, इसको पेशमस ने एक बड़े अच्छे तरीके से कहा है, चल छबीला सुनो अलबेला मैया तू मन विच लावो मेरे साहेब, अब तेरी मोहब्बत लगी। छेल छबीला जो घड़ी छुप जाता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी ये रंग है कभी वो रंग है, इसका समझना इजी नहीं। एक सूफी ने एक गाना गाया है, बेचारा मर गया 2-3 साल पहले, दूसरा फतेह अली खान वो सूफी था, अली का आशिक था, अली के लिए बहुत कुछ बोला है लेकिन अल्लाह की शान में भी कुछ बोलता था। एक दफा उसने खुदा को कहता है कि तुम एक गोरख धंधा हो, खुदा को कहता है गोरख धंधा यानी पजल, हो भी और नहीं भी, समझ नहीं आती कि तुम क्या हो। यही वो चीज है कि जो पिछले दिन यहां माँ बाप फरमा रहे हैं कि ऐ मौला तू कभी अलूप हो जाता है कभी जाहिर हो जाता है। रब जहां तफसीर जहां हो रे भाई, इतना अच्छा लफ्ज, ऐसे अच्छा मजा आ गया। तफसीर जहां, कुरान शरीफ को समझना कहते हैं तफसीर, तफसीर कहते हैं इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन। तो यहां कहते हैं कि ऐ रब जहां, जहां जान की तफसीर बन जाए, यानी इंसान की जो जान है वो हकीकत में रब की शनाख्त है। रब जहां तफसीर जहां होई ता बूझे बूझन हारा कोई, इस चीज को समझने वाला कोई कोई है। तफसीर जहां, मैं इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। तफसीर अरबी में समझ को कहते हैं, और जान की समझ जब खुदा बन जाता है कि हमारी जान क्या है, हमारी लाइफ क्या है। मौला मुर्तजा अली फरमाया कि जो शख्स ने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा ताला को पहचान लिया। खुदा की शनाख्त करने के लिए खुद की शनाख्त करो पहले। सब कुछ अंदर है, अंदर पहाड़ हैं, दरिया हैं, समुंदर है, सूरज है, चांद है, जो कुछ भी सारी खुदा की क्रिएशन में है वो सब हमारे अंदर है। सुबह की इबादत इसलिए दी गई, वो तो सिर्फ एक रास्ता बताने के लिए है। सुबह की इबादत काफी नहीं, दिन के और भी वक्तों में थोड़े थोड़े टाइम के बाद इबादत करते रहते हैं। आज की दुनिया के लिए ये भुज निरंजन का रास्ता बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है कि सब लोग नहीं कर सकते। धंधा भी करना है, बच्चे बड़े करने हैं, माँ बाप को संभालना है, दुनिया रखनी है, टेलीविजन देखनी है, सिनेमा जाना है, ये सब मौज शौक भी करने हैं, खाना पीना भी है, कपड़े लत्ते भी हैं, उनके लिए ये रास्ते नहीं है। ये रास्ता उनके लिए है कि जिनको सिर्फ वो चाहिए, और उसको अगर चाहना है तो बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तफसीर जान ये है, जब वो एम बन जाता है, जब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जब वो हमारी डेस्टिनेशन बन जाता है, तो फिर बाकी की सब चीजें अधूरी रह जाती है। रहता है दुनिया में जेली की तरह, एक प्रिजनर की तरह, मगर उसके ख्यालात सब वहां होते हैं। सूफी और जो मिस्टिक्स जो है उनकी जिंदगी पढ़नी चाहिए, उनके हालात पढ़ने चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हमारा मजहब क्या है। रे तू ही मेरा साचा साईया, पियो जी तुई जेने रंग ने रूप नहीं, भाई जेने रंग ने रूप नहीं, नहीं कुछ नाम ने ठाम रे, भाई नहीं कुछ नाम ने ठाम, सो गुपत
प्रकट भए ए भाई सो गुप्त प्रकट भए लाख धरो तिस नाम रे भाई लाख धरो तिस नाम ना उसका नाम है ना रंग है ना रूप है ना फिजिक है कुछ पता ही नहीं छुपा हुआ है लेकिन जब वो प्रकट होता है जाहिर होता है अपीयर होता है अब उसको जिस नाम से चाहो पुकारो लाखों नाम बना दो उसको हर नाम उसका नाम है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है खुदा के बहुत से नाम है किसी भी नाम से उसको याद करो रहमान कहो रहीम कहो रब कहो खालिक करो कुछ भी कहो वो अकेला है वो हमारा महबूब है वो हमारा माशूक है वो हमारा स्वीट हार्ट है वो हमारी जान है वो हमारी जिंदगी का मकसद है वही सब कुछ है हम उसके अंदर फना हो जाए ये बूझने नहीं चले। सुखी बद्रो मौला आपकी नेकुमतें पूरी करे हकीकती समझ देवे अपना इश्क मोहब्बत देवे अपनी समझ देवे दीन और दुनिया के अंदर आपकी मदद करे बदियों से बुराइयों से गुनाहों से खराबियों से शैतानियत से बचा के रखे मौला हर नेक उम्मीद पूरी करे और अपनी शक्ल दिखाए अपना नूर दिखाए अपना रंग दिखाए अपना आप दिखाए आपके दिलों को मौला अपने मोह से भर दे सुखिया बात रहा
Khana Badan, Khana Badan.
Amin, Amin.